मैं सचिन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष उच्चतम न्यायालय अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय का गठन। संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। ऐसे विधान के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और 25 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, ऐसा अनुच्छेद 124 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करे। इसी प्रकार यदि अस्थायी न्यायाधीशों में गणपूर्ति की कमी है तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 127-128 में वर्णित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए मंत्रियों की सलाह के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर सकेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की दशा में वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे। उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह अधिकथित किया है कि यदि उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है तो उसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में इनके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है, ऐसा अनुच्छेद 124(1) में वर्णित है। साधारणतः परामर्श का अर्थ सहमति होगा। इस उपबंध से कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग उपांतरित हो जाता है, क्योंकि इससे यह उपबंध किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका के सदस्यों से परामर्श करना चाहिए। कारण यह है कि वे इस विषय में अपनी राय देने के लिए अहर हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति किए जाने में वरिष्ठता की सुसंगति से संबंधित बातों में मुख्य न्यायाधीश और उसके भ्राता न्यायाधीश में परामर्श के संबंध में अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए एक निर्देश में 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने राय दी कि प्रथम, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय जिसे परामर्श की प्रक्रिया में प्रमुखता दी जाती है और जिसमें न्यायपालिका की राय प्रतिबिंबित होती है, ऐसी मंडली से परामर्श के आधार पर बनाई जानी होती है जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए यदि वह 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में नहीं है। उनके मत लिखित अभिप्राप्त किए जाने चाहिए। द्वितीय, उच्चतम न्यायालय के उन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मत को जो उन उच्च न्यायालयों से आए हैं जहां अनुशंसित व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि वे मंडली में शामिल नहीं हैं तो लिखित अभिप्राप्त किए ही जाने चाहिए। तृतीय, मंडली के सदस्यों के मत के साथ साथ मंडली की संस्तुति तथा उन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मत जो उन उच्च न्यायालयों से आए हैं जहां अनुशंसित व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत सरकार को भेज दिया जाना चाहिए। चतुर्थ, उन अन्य लोगों के मतों के सार का उल्लेख जिनसे मुख्य न्यायाधीश ने या उसकी ओर से किसी अन्य ने परामर्श लिया, विशिष्ट रूप से वे लोग जो न्यायाधीश नहीं हैं, ज्ञापन में किया जाना चाहिए और भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। पंचम, प्रसामान्यतया मंडली को अपनी संस्तुति सर्वसम्मति के आधार पर करनी चाहिए, परंतु मतभेद होने पर यदि मुख्य न्यायाधीश विसम्मत हो तो किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। षष्ठ, यदि मंडली के 2 या अधिक सदस्य विसम्मत हैं तो मुख्य न्यायाधीश को संस्तुति पर अड़े नहीं रहना चाहिए। सप्तम, अनुशंसित व्यक्ति की नियुक्ति न किए जाने की दशा में भारत सरकार द्वारा भेजी गई सामग्री और जानकारी मूल मंडली या पुनर्गठित मंडली, यदि ऐसा है तो के समक्ष इस बात पर विचार के लिए अवश्य पेश की जानी चाहिए कि संस्तुति वापस ले ली जाए या फिर से की जाए। यदि सर्वसम्मति से संस्तुति फिर से कर दी जाती है तो नियुक्ति कर ही दी जानी चाहिए। अष्टम, मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से उस व्यक्ति की नियुक्ति न किए जाने के लिए जिसकी अनुशंसा की गई थी भारत सरकार द्वारा बताए गए कारण उसके ज्ञान में ला सकता है और उस पर उसकी प्रतिक्रिया मांग सकता है, जो यदि बतलाई गई तो उस पर मंडली द्वारा संस्तुति वापस लिए या फिर से किए जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। नवम, योग्यता के विचार में अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि उनके उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की आपस में वरिष्ठता और उनकी भारत के समस्त न्यायाधीशों में वरिष्ठता पर बल दिया जाना चाहिए। दसम, किसी व्यक्ति की निम्नतर वरिष्ठता पर ध्यान न देकर उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति की संस्तुति के तर्कपूर्ण और अच्छे कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। ग्यारहवां, लगभग बराबर की योग्यता रखने वाले कई व्यक्तियों में से किसी एक की अनुशंसा के लिए इस बात को कि किन उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय में नहीं है विचार में लिया जा सकता है। बारहवां, उपेक्षित न्यायाधीश पर पुनर्विचार किया जा सकता है जब तक कि जोरदार कारणों के आधार पर यह अभिलिखित न कर दिया गया हो कि उसकी नियुक्ति कभी न की जाए। तेरहवां, इन संनियमों का अनुपालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश की संस्तुतियां और अपेक्षाएं भारत सरकार पर आबद्ध कर नहीं होंगी। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अर्हताएं, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह क, भारत का नागरिक हो, ख, या तो एक पारंगत विधिवेत्ता हो, या किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक उच्च न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ऐसा अनुच्छेद 124(3) में वर्णित है। न्यायाधीशों की पदावधि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु या नियत पदावधि विहित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त किए जाने के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से कोई आकस्मिकता घटने पर न्यायाधीश नहीं रहेगा। क, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। ख, राष्ट्रपति को संबोधित लिखित द्वारा अपना पद त्याग करने पर। ग, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, अर्थात उस सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत द्वारा। ऐसा हटाया जाना केवल 2 आधारों पर हो सकता है। प्रथम, साबित कदाचार, और द्वितीय, असमर्था पर। ऐसा अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। न्यायाधीशों पर महाभियोग, अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश अधिनियम 1968 का सम्मिलित प्रभाव यह है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है। प्रथम, लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। द्वितीय, इस प्रस्ताव का अन्वेषण 3 व्यक्तियों की समिति करती है। इनमें से 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 1 प्रख्यात विधिवेत्ता होता है। तृतीय, यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या न्यायाधीश असमर्थ है, तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए उस सदन में ग्रहण किया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित है। चतुर्थ, यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। पंचम, राष्ट्रपति जब समावेदन पर आदेश कर देता है तो न्यायाधीश हटा दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया एक ही है। संविधान के पश्चात पहली बार यह प्रक्रिया 1991-93 में श्री आर रामास्वामी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध हुई। समिति ने न्यायाधीश को दोषी पाया, किंतु लोकसभा में कांग्रेस दल ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिससे प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित न हो सका। वेतन आदि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 30,000 रुपये प्रतिमास वेतन और निःशुल्क शासकीय निवास दिया जाता है। मुख्य न्यायमूर्ति को वेतन 33,000 रुपये है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की स्वतंत्रता कई प्रकार से सुनिश्चित की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? क, यद्यपि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हुए राष्ट्रपति है, फिर भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति के क्षेत्र से अलग करके यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति इस विषय में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेगा। ख, यह अधिकृत करके कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्थित समावेदन पर ही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। यह उपबंध इंग्लैंड में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 के समय से विद्यमान नियम के समान है। वह नियम यह है कि वरिष्ठ न्यायालयों के न्यायाधीश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु वे सदाचारी रहने तक ही पद धारण करते हैं और सम्राट उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा दिए गए संयुक्त संवेदना पर ही हटा सकता है। ग, संविधान द्वारा न्यायाधीशों के वेतन तय करके और यह उपबंध करके कि उनके भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित किए जा सकेंगे और उनमें न्यायाधीश की पदावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात विधि में कोई परिवर्तन करके उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता, ऐसा अनुच्छेद 125(2) में वर्णित है। किंतु वित्तीय आपात की उद्घोषणा होने पर राष्ट्रपति इस प्रत्याभूति का अधिहरण करने में सक्षम होगा, ऐसा अनुच्छेद 360(4)(ख) में वर्णित है। घ, यह उपबंध करके कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारी वृंद के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर प्रभारित होंगे, अर्थात संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती, ऐसा अनुच्छेद 146(3) में वर्णित है। अंग, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं, ऐसा अनुच्छेद 121 में वर्णित है। च, यह अधिनियमित करके कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी न्यायालय में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 124(7) में वर्णित है। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में इसी के समान उपबंध है। संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय की स्थिति, यह ठीक ही कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति और विस्तार को देखते हुए किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। यह परिसंघ न्यायालय भी है, अपील न्यायालय भी है और संविधान का संरक्षक भी, तथा उसके द्वारा संविधान के अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में अन्य सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, ऐसा अनुच्छेद 141 में वर्णित है। अमरीकी उच्चतम न्यायालय से तुलना, हमारे उच्चतम न्यायालय को अमरीकी उच्चतम न्यायालय की तुलना में कई बातों में व्यापक शक्तियां हैं। पहला, अमरीकी उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता परिसंघीय संबंधों से उत्पन्न होने वाले या विधियों और संधियों की संवैधानिक विधि मान्यता से संबंधित मामलों तक ही सीमित है, किंतु हमारा उच्चतम न्यायालय परिसंघीय न्यायालय भी है, संविधान का संरक्षक भी है और संविधान के निर्वचन के संबंध में उत्पन्न होने वाले मामलों के अतिरिक्त सिविल और दांडिक मामलों के संबंध में यह देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है, ऐसा अनुच्छेद 133(34) में वर्णित है। दूसरा, हमारे उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के विनिश्चय से अपील ग्रहण करने की असाधारण शक्ति है, इसे विवेकाधिकार की कोई सीमा नहीं है, ऐसा अनुच्छेद 136 में वर्णित है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। तीसरा, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सलाह देने की शक्ति ग्रहण करने से इनकार कर दिया और किसी भी विषय के पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद को निपटाने तक ही अपने को सीमित रखा है। संविधान ने हमारे उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किसी तथ्य या विधि के प्रश्न पर सलाह के रूप में राय देने की शक्ति दी है, ऐसा अनुच्छेद 143 में वर्णित है। प्रथम, परिसंघ न्यायालय के रूप में प्रत्येक परिसंघीय संविधान संघ और इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। संविधान में संशक्ति की मात्रा कुछ भी हो सकती है, संघ और राज्य दोनों सरकारें उसी से प्राधिकार प्राप्त करते हैं और उनकी सीमाएं भी संविधान निर्धारित करता है। इंग्लैंड जैसे ऐक्यिक संविधान में स्थानीय प्रशासनिक और विधायी निकाय केंद्रीय प्राधिकारी के अधीनस्थ निकाय होते हैं, इसलिए केंद्रीय और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का न्यायिक अवधारण करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु परिसंघीय संविधान में शक्तियों का विभाजन राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच होता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संघ और राज्यों के बीच या राज्यों में आपस में विवाद निपटाने के लिए और संविधान द्वारा किए गए शक्तियों के वितरण को बनाए रखने के लिए कोई प्राधिकरण हो। यद्यपि हमारा परिसंघ संगठक इकाइयों के बीच किसी संधि या करार की प्रकृति का नहीं है, फिर भी संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 ने उच्चतम न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच या राज्यों में आपस में न्यायाधीन विवादों का अवधारण करने की आरंभिक और अनन्य अधिकारिता दी है। दूसरा, अपीली न्यायालय के रूप में इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समान भारत का उच्चतम न्यायालय भी देश का अंतिम अपीली अधिकरण है और कुछ विषयों की बाबत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी अधिक है। दांडिक अपीलों के बारे में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील तभी हो सकती है जब महान्यायवादी यह प्रमाणित करता है कि दांडिक अपीली न्यायालय के विनिश्चय में व्यापक महत्व का कोई अति विशिष्ट विधिक बिंदु अंतर्वलित है और लोक हित में यह वांछनीय है कि एक और अपील की जाए।